प्रियल सो रही थी और निक उसे देखता जा रहा था। निक ने उसे सोते हुए देखकर कहा, सोते हुए कितनी मासूम लग रही है, और जागो तो इनके सवाल ही खत्म नहीं होते। इतने सवाल पूछती है कि बंदा सवाल सुन सुनकर ही पागल हो जाता है। फिर निक ने अपने चेहरे पर एक मीठी सी मुस्कुराहट दी और प्रियल के पास आकर उसके माथे पर किस किया। किस करने के बाद वो एकदम से पीछे हटा और बोला, कंट्रोल योर फीलिंग्स निक, बस कुछ दिनों की बात है। अगले 17 दिनों तक दोनों का दैनिक दिनचर्या पूरी तरह से व्यवस्थित हो गया। सुबह उठते ही दोनों अपने अपने काम पर चले जाते, निक इंस्टीट्यूट में और प्रियल ट्रेनिंग सेंटर में। दोपहर से लेकर शाम तक प्रियल ट्रेनिंग सेंटर में थोड़ा बहुत आराम कर लेती थी, वहीं निक का इंस्टीट्यूट में काम 6 बजे खत्म होता था। शाम होते ही दोनों होटल आ जाते थे, वहां प्रियल जॉब का काम करने लगी थी और निक फ्रेश हो जाता था। फिर इसके बाद दोनों एक साथ बैठकर पढ़ाई करते थे, उनमें थोड़ी मौज मस्ती भी होती थी और इधर उधर की बातें भी। कई बार वे लॉन्ग ड्राइव पर निकल जाते थे जहां दोनों रेस लगाते थे। स्ट्रीट फूड भी उन्होंने इन दिनों काफी एंजॉय किया। ये 17 दिन पढ़ाई के साथ साथ उनकी लाइफ के लिए काफी बेहतरीन हुए थे। ठीक 17 दिन बाद एग्जाम का रिजल्ट आया। रिजल्ट सबसे पहले जेनी के लैपटॉप पर आया और फिर वो साथ ही साथ दूसरे लोगों के पास चला गया। प्रियल का ईमेल जेनी के लैपटॉप में ओपन हुआ। निक ने उसे खोला था। उसके पास रॉन, आर्यन, जिनी और एमा सब लोग थे। जैसे ही रिजल्ट का नोटिफिकेशन आया, निक ने उसे जल्दी से ओपन कर लिया था। सब ट्रेनिंग सेंटर के अंदर जिनी के रूम में थे। जिनी ने हल्के से डर के साथ पूछा, क्या रिजल्ट रहा, जल्दी बताओ। एमा भी बोली, बताना क्या रहा, पास तो हो ही गई होगी ना। रॉन ने भी कहा, यार इतना टाइम क्यों लग रहा है, जल्दी बताओ ना। सबको अजीब सी टेंशन थी। आर्यन को ये देखकर हंसी आने लगी। जिनी बोली, आर्यन तुम हंसना बंद करोगे, हमारे यहाँ एक्साइटमेंट के मारे जान जा रही है और तुझे हंसी आ रही है। आर्यन बोला, इतना एक्साइटेड तो आप लोग अपने रिजल्ट के लिए भी नहीं हुए होंगे जितने प्रियल के लिए हो रहे हैं। अरे भाई, अपने निक ने उसे पढ़ाया है, उसके नंबर कैसे कम। तभी निक खड़ा हुआ और कहा, ओ माय गॉड, मिस शर्मा आपने तो कमाल कर दिया, काफी अच्छा इम्प्रूवमेंट किया है इस लड़की ने। मतलब जो लड़की 30% वाली थी वो सीधा 65% तक आ गई, खतरनाक। जिनी के चेहरे पर खुशी आ गई। उसने कहा, चलो एडमिशन तो कन्फर्म हो गया इसका, ट्रेनिंग में भी अच्छे नंबर मिले हैं। सबके चेहरे पर खुशी दिखाई दे रही थी क्योंकि प्रियल ने ट्रेनिंग सेंटर के एग्जाम को क्रैक कर लिया था। रॉन निक के पास आया और सबकी खुशी में शामिल होते हुए निक को बोला, एडमिशन तो कन्फर्म होना ही था, हमारे निक ने जो पढ़ाया है। एमा बोली, हाँ बिल्कुल, तुमने उसके अच्छे नंबर के लिए काफी मेहनत की है। निक ने चेहरे पर शरारत भरा अंदाज बनाकर कहा, मैंने प्रियल को नहीं पढ़ाया। जिनी, रॉन और एमा तीनों एक साथ बोले, क्या मजाक कर रहा है क्या। निक ने कहा, अरे मेरा मतलब मैंने उसे सिखाया है, मैंने उसे चीजें सिखाई हैं, ये जितने भी नंबर आए हैं इसमें उसका अपना एफर्ट है। सिर्फ सीखना ही कुछ नहीं होता, सीखने के बाद उस पर मेहनत भी करनी होती है और प्रियल ने उस पर मेहनत की है। आर्यन बोला, वैसे गाइस, प्रियल अब हम सबकी चहेती बन चुकी है, अब जब वो इंस्टीट्यूट में आएगी तो काफी मजे आएंगे, अपना निक इसके तो दिन बन जाएंगे। इतना कहकर उसने एक तकिया उठाकर निक की तरफ फेंका, मौज करना तुम अब बेटा। निक ने कहा, मौज और उसके साथ, दिमाग खराब ही होता है उसके साथ। और वही तकिया उसने दोबारा आर्यन की तरफ फेंक दिया। उधर प्रियल और आरोही दोनों अपने रूम में थी, उन्होंने भी प्रियल के मार्क्स देखे। सुधा भी रूम में थी और सब अपने अपने नंबर देख रहे थे। आरोही बोली, हम तीनों का ही सिलेक्शन हो गया है, ये पी, और खड़ी होकर दोनों को कसकर गले लगा गई। सुधा ने कहा, मेरे 70% मार्क्स बने हैं। आरोही बोली, मेरे 80। प्रियल हंसते हुए बोली, और मेरे 65%। सभी ये सुनकर एक साथ हंस पड़े। तीनों कुछ देर तक चलती रहीं, फिर सबकी सब अपने बेड पर बैठ गईं। आरोही बेड पर बैठते हुए बोली, इतना इम्प्रूवमेंट प्रियल, एक टाइम था जब तुम सिर्फ 35% के आसपास थी। प्रियल बोली, हाँ, निक चाहते थे कि मैं ये एग्जाम्स क्लियर करूं, इसके लिए उन्होंने काफी मेहनत की है, मुझे पढ़ाया लिखाया भी है, मैं काफी खुश हूँ। ये कहते कहते उसके चेहरे पर एक उदासी सी छा गई। उसने आगे कहा, बाकी तो तू जानती है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता पास होने या फेल होने से, क्योंकि नेक्स्ट ईयर की फीस पे करने के पैसे नहीं है मेरे पास। जो भी खर्चा था मैं सब इन 3 महीनों में ही उड़ा दिया। मैं जो पर डे पैसे कमाती हूँ वो इतने नहीं है कि उससे फीस पे कर सकूँ। आगे एडमिशन के लिए मेरे पास कोई जुगाड़ नहीं है। आरोही बोली, मैं कुछ करूँ। प्रियल बोली, नहीं, मुझे किसी का फेवर नहीं चाहिए। आरू, वो काफी ज्यादा उदास हो गई। मेरा दिल बैठता जा रहा है निक से दूर जाने के बारे में सोचकर, बस इतना ही वक्त था मेरे पास। फिर वो रोने लगी और रोते हुए बोली, निक और हमारी कहानी बस यहीं तक की थी, शायद इसके बाद तो मैं उन्हें कभी देख भी ना पाऊं। सुधा से उसकी ये हालत देखी नहीं जा रही थी। उसने कहा, मैं आलिया से बात करूं, वो जैन से बात कर लेगी, इससे इस प्रॉब्लम का कुछ हल हो जाएगा। प्रियल बोली, तुम दोनों अगर सच में मुझे प्यार करती हो तो किसी को कुछ नहीं कहोगी, इस तरह से अगर हो भी गया तो ये मुझे कभी अच्छा नहीं लगेगा, अगर कुछ नहीं किया तो। आरोही ने कहा और फिर अपने शब्द रोक लिए। कुछ देर रुकने के बाद उसने कहा, तब तुम्हारे पास बस कल का दिन है और मैं उसे रोकर नहीं हंसी खुशी साथ बिताऊंगी, प्रियल बोली और अपने चेहरे पर नकली खुशी दिखाई। फिर उसने अपने दोनों दोस्तों को कहा, चलो आओ मस्ती करो। तीनों फिर से नाचने लगी। आरोही और सुधा नाच नहीं रही थी, लेकिन प्रियल उन्हें जबरदस्ती नाचा रही थी। सुधा ने इसी बीच कहा, प्रॉमिस करो हमेशा टच में रहेंगी, कभी हम भूलेंगी नहीं। बिल्कुल नहीं। तभी प्रियल के पास जिनी का कॉल आया। प्रियल ने नाचना बंद किया और फोन उठाया। जिनी ने उसे अपने रूम में बुलाया था। प्रियल बोली, मुझे जिनी बुला रही है, आती हूँ मैं। ऐसे रोते हुए जाएगी? प्रियल की आंखों से अभी भी आंसू आ रहे थे। प्रियल अपने आंसू पोंछकर वहां से चली गई। प्रियल रास्ते में दोबारा से अपनी आंखों को साफ करते हुए बोली, क्या करूं, ये आंसू तो रोके नहीं रुक रहे। वो एक जगह दुखी होकर गहरी गहरी सांस लेकर खुद पर कंट्रोल किया। कुछ और आंसू आए थे, उसने उन्हें भी साफ किया। फिर वो जिनी से मिलने के लिए चली गई। प्रियल अपने आंसू पोंछकर जिनी के पास गई, लेकिन वो चेहरे से अभी भी उदासी दिख रही थी। प्रियल वहां गई तो देखा निक भी वहीं था। जिनी ने प्रियल के गले लगते हुए कहा, ओ प्रियल, तेरा परफॉर्मेंस कमाल ही कर दिया, तुम्हारा स्वागत है हमारे इंस्टीट्यूट में। प्रियल धीरे से बोली, थैंक्स। निक ने सोचते हुए कहा, इसे क्या हुआ, वरना तो इतना बोलती है, पागल जैसी हरकतें करती है, और आज इसका चेहरा इतना उतरा हुआ कैसे। रॉन सबके बीच बोला, आज हमारी प्रियल ने अच्छा परफॉर्म किया, आज रात की पार्टी प्रियल को मेरी तरफ से। निक पूरे गौर से प्रियल के बिहेवियर को ऑब्जर्व कर रहा था। उसके चेहरे को देखकर वैसे तो पता नहीं लग रहा था उसे कुछ हुआ है, मगर निक उसके साथ पिछले 17 दिनों से लगातार रहा है, तो उसे अपने आप ही वाइब्स आ रही थी कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। निक ने कदम आगे बढ़ाए और प्रियल को कहा, आज तो मिस शर्मा मजे हैं आपके, सब इतना पैंपर क्यों कर रहे हैं। प्रियल ने अपने चेहरे पर मुस्कुराहट दी और फिर भगवान की तरफ देखते हुए कहा, थैंक्स रॉन सर। अचानक उसकी आंखों में दोबारा आंसू आने लगे। वो सबको बोली, मेरी अभी तबीयत ठीक नहीं है, और फौरन बाहर की ओर भागते हुए वहां से चली गई। निक से अलग होने का एहसास उससे झेला नहीं जा रहा था। एमा उसके जाने के बाद सबको देखकर बोली, इसे क्या हुआ। पता नहीं, जिनी ने कहा, पहले तो कभी इसे ऐसे नहीं देखा, ये ऐसे कैसे अचानक रो पड़ी।
मुझे भी समझ में नहीं आ रहा, निक ने कहा, इतना अच्छा रिजल्ट आया है फिर भी इतनी दुखी, कुछ तो गड़बड़ है, मैं देखता हूँ, उसने कहा, और फिर वो भी बाहर की तरफ चला गया। निक प्रियल के पीछे गया तो उसे किसी से फोन पर बात करते देखा। वो उधर छुपकर ही उसकी बातें सुनने लगा। प्रियल अर्जुन से बात कर रही थी और उसे अपनी सारी टेंशन के बारे में बता रही थी। अर्जुन बोला, तुम उदास मत हो प्रियल, मैं करता हूं ना कुछ। प्रियल बोली, नहीं अर्जुन। निक ने मन में सोचते हुए कहा, क्या नहीं अर्जुन, ये उस नौटंकी अर्जुन से क्या बात कर रही है, आखिर प्रॉब्लम क्या है। बता कितने दिन का टाइम है, अर्जुन ने पूछा। प्रियल बोली, रूल एंड रेगुलेशन के हिसाब से 15 दिन। फिर उसने कहा, और क्या क्या करोगे तुम मेरे लिए, वैसे भी मेरी वजह से तुम्हारी कार, मैं नहीं चाहती तुम हर बार मेरे लिए कुछ ना कुछ करो, मेरा दिल इसके लिए कभी नहीं मानेगा। अगर मेरी मदद के लिए तुम्हारा दिल कभी नहीं मानेगा तो अपने हीरो से बोलना, उसे कहना, वो देखना कैसे तुम्हारी मदद करेगा। नहीं, प्रियल बोली, किसी से भी नहीं कहना कुछ, मैं अमृतसर जा रही हूँ कल, मुझे शादी भी अटेंड नहीं करनी अब, वैसे भी मुझे वहां देखकर कोई खुश नहीं होने वाला। यार मैं तुझे ऐसे नहीं देख सकता, तो इतनी मेहनत करके भी, पास होकर भी, अर्जुन प्रियल के लिए परेशान हो रहा था। ये सही नहीं है, तुमने सब चीजों के लिए कितनी मेहनत की है, अब जब तुझे कामयाबी मिल रही है तो ऐसे नहीं हो सकता तुम्हारे साथ। प्रियल बोली, देखो अर्जुन, मुझे पास या फेल होने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था, तुम अच्छे से जानते हो, निक चाहते थे मैं अच्छा रिजल्ट दूं, बस इसी वजह से, फिर उन्होंने मुझे पढ़ाया भी, मैं उनकी मेहनत बेकार नहीं होने देना चाहती थी, और मैंने उनकी मेहनत बेकार नहीं होने दी, वरना क्या फर्क पड़ने वाला था मेरे पास या फेल होने से, कौन से मेरे पास नेक्स्ट ईयर की फीस के पैसे थे जो मुझे खुशी मिलती, मुझे यहां से जाना ही होगा अर्जुन। निक को ये सुनते ही पूरा माजरा समझ में आ गया, पूरा माजरा समझ में आ गया, और वो भी प्रियल के दूर जाने के ख्याल से तड़प उठा। उसने कहा, सोचना भी मत कि मैं अब तुझे खुद से कभी दूर जाने दूंगा, तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो मैं हूं ना, मैं दूंगा तुम्हारे पैसे, निक ने कहा और वहां से चला गया। वो अपने दोस्तों के पास पहुंचा और अपने दोस्तों को सब कुछ बता दिया। निक ने सबको बताने के बाद उनसे पूछा, मुझे बताओ मैं अब क्या करूं, कैसे हेल्प करूं उसकी, पैसे वो मुझसे लेगी नहीं, फेस पे करूंगा तो मेरा नाम आ जाएगा, क्या हम उसके लिए स्कॉलरशिप अप्लाई कर सकते हैं। एमा इसका जवाब देते हुए बोली, नहीं निक, उसके मार्क्स इतने अच्छे नहीं हैं कि वो स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हो। जिनी अलग ही सोच में खोई हुई थी, उसने कहा, मुझे भी नहीं बताया उसने, और ऐसे ही सबसे दूर चली जाती है तो, ये लड़की आखिर हम सब कुछ बताती क्यों नहीं है, कोई भी परेशानी हो इसे पहले हम आकर बतानी चाहिए। निक फौरन बोला, अब मुझसे दूर नहीं जा सकती वो, प्यार करता हूँ मैं उससे, और मेरा प्यार वन साइडेड होता तो भी बात अलग थी, उसके दिल में भी मेरे लिए फीलिंग्स हैं। रॉन ने कहा, तो बता दे, तुम प्रपोज कर दो ना, फिर शायद तेरी हेल्प ले ले वो। निक ने कहा, नहीं अभी तो ऐसा नहीं कर सकते, इंस्टीट्यूट में जा रही है, अगर अभी ऐसा किया तो उसकी स्टडी रह जाएगी बीच में, इंस्टीट्यूट में भी स्टार्टिंग मंथ में पढ़ाई पर ध्यान देना पड़ता है, वरना वो लोग वहीं से बाहर निकाल देते हैं। एमा बोली, अरे प्यार से पहले ये बता, दत्ता का क्या करेगा तू, वो करने देगा तुझे प्रियल से शादी। निक ने कहा, प्रियल मुझे प्यार करती है, मेरे लिए वो ही काफी है, बाकियों को देख लूंगा मैं। फिर उसने कहा, और अभी ये सब परेशानी की बात नहीं है, अभी मेन प्रॉब्लम ये है कि प्रियल की फीस का जुगाड़ कैसे किया जाए। ये कहते ही अचानक उसके माइंड में कुछ आया और वो चुटकी बजाते हुए बोला, मिल गया, और कहकर बाहर की तरफ चल पड़ा। सब लोग उसे जाते हुए देखते ही रह गए। निक गाड़ी में बैठा और उसे अपने इंस्टीट्यूट की ओर ले गया। तकरीबन 20 मिनट बाद वो इंस्टीट्यूट में था। इंस्टीट्यूट में निक रॉन और जिनी के डैड के पास गया, जो कि प्रिंसिपल और डायरेक्टर थे इंस्टीट्यूट के। जैसे ही वो ऑफिस में दाखिल हुआ, दोनों ने उसे देख लिया। मिस्टर पॉटर उसे देखते हुए बोले, क्या हुआ निक, सब ठीक है ना, इतने हड़बड़ाए हुए क्यों हो? वहीं मिस्टर डिसीना ने पूछा, और परेशान भी हो? परेशान क्यों हो, जिनी ने कुछ कहा? निक ने कहा, नहीं सर, दोनों एक साथ बोले। सर, निक आगे आया और जल्दी जल्दी में कहा, मैं किसी की फीस पे करना चाहता हूँ, पर उसे पता नहीं चलना चाहिए मैंने फीस पे की है। मिस्टर पॉटर हंसे, अच्छा गर्लफ्रेंड कौन है वो? निक ने कहा, जस्ट स्टूडेंट, बट वो फीस पे नहीं कर सकती है, तो आप कुछ हेल्प कर सकते हैं क्या? बस मेरा नाम आगे नहीं आना चाहिए। मिस्टर डिसीना ने सोचने वाला चेहरा बनाया, सकती है, मतलब लड़की है, और क्या हेल्प? स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल है? तुम स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर दो, हम अप्रूवल दे देंगे। निक ने कहा, नो, अगर ऐसा होता तो मैं ही संभाल लेता, इसीलिए तो मैं फीस पे कर रहा हूँ, पर आपसे वो पूछे तो आप बोल देना कि कुछ भी यार, मैं बस कर रहा हूँ पे, उसने कहा, और तुरंत ये बोलकर वहां से अकाउंट डिपार्टमेंट में चला गया, वो भी प्रियल के नेक्स्ट ईयर की फीस पे करने। मिस्टर पॉटर पूरी तरह से हैरान थे, मिस्टर डिसीना भी। मिस्टर पॉटर बोले, कौन है लड़की, जरा पता करना तो, बड़े को प्यार हो ही गया फाइनली, और ऐसा प्यार है कि बेचारी की फीस के लिए भागता भागता फिर रहा है। मिस्टर डिसीना के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, चलो अच्छा है, वरना इसकी फिक्र रहती थी, एली के जाने के बाद से बस अकेला ही है, अब कोई इसकी जिंदगी में आएगा तो खुशियां लौट आएंगी इसकी। निक ने फीस पे की और एक डॉक्यूमेंट बनाकर वहां से चला गया। निक ट्रेनिंग सेंटर में पहुंचते ही वही डॉक्यूमेंट लेकर प्रियर के पास चला गया। उसके पास जाते ही उसने कहा, कंग्रेचुलेशंस मिस शर्मा, ये देखिए आपने इतना इम्प्रूवमेंट किया है कि उसकी वजह से आपको स्कॉलरशिप मिली है, और नेक्स्ट ईयर आपकी फीस भी पे हो गई, वो भी एडवांस में, आपका वार्म वेलकम है हमारे इंस्टीट्यूट में। प्रियल हक्की बक्की रह गई, उसने डॉक्यूमेंट पकड़ा और देखते हुए बोली, क्या सच में सर, पर मेरे मार्क्स तो इतने अच्छे नहीं थे जो स्कॉलरशिप मिले, ये स्कॉलरशिप आखिर ऐसे कैसे मिल गई? अरे इम्प्रूवमेंट के बेसिस पर हो रहा है इस साल सब, निक को बताने के लिए बात नहीं मिल रही थी, इस बेसिस पर कि किसने कितना इम्प्रूव किया है, और इसी वजह से आपको चुना गया है क्योंकि आपकी इम्प्रूवमेंट काफी ज्यादा अच्छी थी। प्रियल काफी खुश हो गई क्योंकि अब उसे निक से दूर नहीं जाना पड़ेगा, इसी खुशी में निक के गले लग गई। गले लगते हुए उसने कहा, थैंक यू सो मच सर। वहीं निक ने भी उसकी पीठ पर हाथ रखे और सोचते हुए कहा, क्या क्या करना पड़ रहा है मुझे मिस शर्मा आपके लिए, हमारा रास्ता ऐसे ही बना रहे, ये कहकर उसने अपने चेहरे पर स्माइल दी। दोनों काफी देर तक गले लगे रहे, फिर निक प्रियल से बोला, ओके मिस शर्मा अब मुझे चलना चाहिए। वो अलग हुआ और जाने की तैयारी करने लगा। उसने कहा, अब हम रोहन की शादी पर मिलेंगे, आप चलेंगे? निक ने चेहरे पर मुस्कुराहट दी और कहा, जरूर, अब तो चलना ही पड़ेगा। प्रियल ने अपने चेहरे पर एक मीठी सी मुस्कुराहट दे दी। दोनों के साथ जो भी हो रहा था, दोनों उसके लिए खुश थे। उन दोनों के रिश्ते भी अच्छे हो चुके थे। दोनों की जिंदगी का कारवा अब एक अच्छे रास्ते पर चल रहा था।